Om Shanti, and a very good evening to one and all. I'm grateful to Sarika Ben for a very generous introduction. और मैं आभारी हूँ अपने बिपिन भाई और मीनल बेन की भी कि उन्होंने सबको एक्टिवेट कर दिया अपने गेम सेशन और एक्टिविटी सेशन से, क्योंकि बहुत बार जो कॉन्फ्रेंस का सर्वप्रथम दिन होता है इनॉग्रेशन, वो एक्सटेंड हो जाता है और फिर पार्टिसिपेंट्स थोड़े से थक जाते हैं, फिर भोजन करके वापस जब तक आए तो थोड़ी सी नींद भी आ जाती है, एंड इट्स क्वाइट नेचुरल, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो उन्होंने आप सबको एक्टिवेट कर दिया, ऐसी मेरी सोच है। और इस सत्र का जो टॉपिक है, फॉस्टरिंग पीस फॉर यूनिवर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर जो अभी टाइम बचा है उस टाइम कंस्ट्रेंट्स में मैं अपने विचार रखूंगी। इसके बाद भी और दो सेशंस है एंड काफी एडुकेटिव स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग सेशंस है। तो दो उदाहरण देना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार कुछ समय से पीस की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है। कल से हम सुन रहे हैं कि शांति को हम बाहर ढूंढते हैं, हालांकि शांति अपने भीतर में ही है, हमारी आत्मा की एक क्वालिटी है शांति, लेकिन कई बार हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो उस पर मुझे आपको, और हाउ डू वी फॉस्टर पीस फॉर द यूनिवर्स, उस पर दो उदाहरण, यानी कि ये दोनों सत्य घटना है। और सर्वप्रथम घटना एक बनी थी जो डॉक्टर ऑलिवर गोल्डस्मिथ, ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड ही हैड क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन मेडिसिन, वो खुद डॉक्टर थे लेकिन उन्होंने कभी मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं की थी। तो ये कई साल पहले की घटना है, और प्रैक्टिस नहीं की थी लेकिन उनका स्वभाव काफी शांत और बहुत ही सबकी मदद करने वाले थे। तो एक बार जब वो रात को सो रहे थे और आधी रात हुई तो उसका दरवाजा खटखटाया गया, एंड उन्होंने उठकर अपना दरवाजा खोला तो एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत बहुत रो रही थी, बाहर काफी बारिश भी हो रही थी, और उन्होंने कहा कि आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, मैं आपसे विनंती करती हूँ कि आप मेरे घर में चलिए, मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने पूछा लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि मैं उनकी फीस नहीं, मेरे में उतनी ताकत नहीं है कि मैं उनकी फीस दे सकूं। तो डॉक्टर ने इस औरत के जो हेल्पलेसनेस है उस पर उनको काफी तरस आया, उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। और वो बूढ़ी औरत के साथ वो उनके घर गए, वातावरण बाहर का कुछ ठीक नहीं था फिर भी वो आधी रात को गए, उनके घर गए, उनके पति से मिले, उनको पूछताछ की कि क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ी देर बैठे बात भी की, और फिर थोड़ी देर के बाद वह उठे और उन्होंने उस औरत से कहा कि मैडम मैं अपने घर से अभी कुछ प्रिस्क्रिप्शन पिल्स भेज रहा हूँ, दवाई, और मेरे प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप उनको दवाई देते रहिएगा। और वो अपने घर पहुंचे, उन्होंने एक छोटा सा डब्बा निकाला और उसमें उसने 10 गिनीज रखे, क्योंकि और 10 गिनीज और ऊपर उन्होंने एक डब्बा, छोटी सी वो डब्बी बंद करके उन्होंने लिख दिया कि प्लीज गिव यूज 1 गिनी फॉर फूड मिल्क एंड कोल एवरी डे एज पर माई प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, एंड बी पेशेंट एंड बी होपफुल, ये उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पर ही लिखा। और उन्होंने वो दवाई की डिब्बी भेज दी जिसमें गिनीज थे, पैसे थे, बिकॉज वहां की करेंसी गिनीज है। और वो डब्बा पहुंच गया उस औरत तक, और एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने रोज एक एक गिनी यूज की। हालांकि इसमें कोई मेडिसिन या दवाई नहीं थी, बट दिस प्रिस्क्रिप्शन एंड दिस वर्ड्स ऑफ द डॉक्टर दैट बी पेशेंट एंड बी ऑनेस्ट वर्क्ड मिरेकल्स इन द लाइफ ऑफ दिस ओल्ड लेडी। और कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर ऑलिवर गोल्डस्मिथ के पास आए और उनको थैंक यू कहने लगे। सो व्हाट एल्स कैन बी अ बेटर सर्विस देन फॉस्टरिंग पीस, प्रमोटिंग पीस फॉर दोज हु आर इन नीड, हेल्पिंग आउट यू नो टू गिव देम पीस इन द मैनर विच अ पर्सन फील्स मोस्ट अप्रोप्रिएट। और दूसरा उदाहरण भी एक सत्य घटना है। अ सोशल रिफॉर्मिस्ट श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, एक दिन वो कोलकाता की स्ट्रीट से चल रहे थे और चलते चलते उनकी नजर एक बहुत ही बूढ़े से इंसान पे पड़ी जो बहुत ही रो रहा था। उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थी और बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके पास गए और उन्होंने कहा कि जेंटलमैन, व्हाट इज ट्रबलिंग यू, आपको क्या तकलीफ है कि आप इतना रो रहे हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि आप मेरी प्रॉब्लम क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग ये स्ट्रीट से गए, सभी ने मेरी प्रॉब्लम पूछी लेकिन वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे किसी ने नहीं दिया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम बताइए, तो जितना मुझसे हो सकेगा वो मैं आपकी मदद करूँगा। तब ये बूढ़े इंसान ने कहा कि कुछ समय पहले मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे और मेरी गरीबी की वजह से मैं वो पैसे नहीं दे पाया, आई वॉज नॉट एबल टू पे बैक दी डेट्स, और वो उस पर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होता गया, मैटर कोर्ट तक पहुंच गई और अब कोर्ट में जो ऑर्डर होगा उसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज की है वो मेरे हाथ से, मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और ये मेरे हाथ से चली जाएगी, मेरा पूरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ और आपकी कोर्ट की डेट मुझे बता दीजिए कब है नेक्स्ट। तो वो डेट बताई गई और जब वो डेट में वो केस हियरिंग के लिए था, तब वो बूढ़ा इंसान जब कोर्ट पहुंचा तो ही वॉज शॉक्ड एंड डम कि कोर्ट ने उनको बताया कि ये केस अब डिसमिस हो चुका है क्योंकि तुम्हारा सारा कर्ज किसी ने भर दिया है, एंड ही वॉज नन अदर देन द सोशल रिफॉर्मर मिस्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाउ किस हद तक हम शांति शेयर कर सकते हैं? सो व्हेन इट इज, आप कल से सुन रहे हो कि जब शांति की बात आती है देर इज अ क्रेविंग, हमारा मन दुखी, किसी न किसी तरह दुखी है, चाहे एक्सपेक्टेशंस की वजह से, चाहे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से, चाहे अटैचमेंट की वजह से, ये जो वाइसेस है उसकी वजह से हमारी खुशी चली गई है और हमारा मन शांत नहीं है। सो आई थिंक दिस टू आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू कैन शेयर पीस विथ अ पर्सन, एंड दैट इज फॉस्टरिंग पीस। स्टार्ट विथ योर ओन सेल्फ, जस्ट एज इट इज सेड दैट चैरिटी बिगिन्स एट होम। So start with the self and it will percolate in the society in the form of action by sharing peace. इस तीन दिन की कॉन्फ्रेंस में तो आप पीस का अनुभव करोगे ही, क्योंकि ये वातावरण यहाँ का माहौल ऐसा है। मधुबन का ज्ञान सरोवर के जो कॉम्प्लेक्स है उसका वातावरण ऐसा है, शायद आपको कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ से जब आप बाहर निकलो तो ये आप जरूर से याद रखना कि पीस हमारा स्वभाव है, हमारी आत्मा की एक क्वालिटी है और वो हम किस तरह से लोगों के साथ अपनी तरह से शेयर कर सके। सो दैट्स फॉस्टरिंग पीस फॉर द यूनिवर्स। टुडे इज 7th ऑफ जून 2024 आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा ही कि व्हाट इज 7th जून एवरी ईयर मार्क्ड फॉर. 7th जून इज मार्क्ड एज द इंटरनेशनल और द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. World Food Safety Day. It is all with an intent to attract global attention, to make people understand about the contaminated food and drinking water. हम भारत देश में रहते हैं, हमें पता है कि कितने लोगों को गरीबी की वजह से खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है. So if it is contaminated over and above, जो कुछ भी थोड़ा मिलता है, so this 7th of June is marked as the World Food Safety Day. Sustainable development की जहां तक बात आती है, आप सारे lawyers हो तो शायद मुझे और intensely बताने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो फर्स्ट टाइम डेफिनेशन बाहर आया वो 1972 के बाद वर्ल्ड लेवल पे ये डिफाइन किया गया. एक कमीशन जिसको ब्रंटलैंड कमीशन कहते हैं, उन्होंने डेफिनेशन दिया कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उन्होंने कहा कि आप डेवलपमेंट करो, खुद का भी विकसित करो, अपना माइंड भी, इवन प्रॉपर्टीज का भी, लेकिन उस तरह से करो कि किसी का और डैमेज ना हो, या फिर इट विल नॉट डैमेज द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट्स. ये 1972 की कॉन्फ्रेंस हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी ने स्टॉकहोम में अटेंड की थी, और उसने कहा कि इवन इंडिया वॉन्ट्स मोर डेवलपमेंट, वी सफर पॉवर्टी एंड वी वॉन्ट टू इराडिकेट पॉवर्टी. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, दैट इज इट्स अ डेवलपमेंट इन द मैनर टू मीट योर ओन रिक्वायरमेंट्स. आज सुबह ही मैंने किसी को सुना, एक स्पीकर को सुना ये कहते हुए कि महात्मा गांधी ने कहा नेचर हैज इनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड. सो ओके, हैव दैट मच वॉट इज रिक्वायर्ड, but don't go to the extent of satisfying your greed. So sustainable development definition is that your development should be in such a fashion that it should meet the requirement of yourself, it should meet the requirement of the present generation without compromising the ability of future generation to meet its own requirement. Bharat desh mein niti aayog hai. नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक 11% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन आर सफरिंग पॉवर्टी, एब्जेक्ट पॉवर्टी. तो जब 11% की बात आती है तो हम रेशियो में अगर गिनती करें तो अबाउट 145 मिलियन पीपल आर लिविंग अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी. आज हम फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नसीब में खाना भी नहीं है, दो वक्त का खाना भी नहीं है. सो दैट इज द टोटल अमाउंट रेशियो ऑफ पीपल हु आर लिविंग अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी. सन 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्ट किए, 17 पैरामीटर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. और सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, बिल्कुल गरीबी नहीं होनी चाहिए. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टी, और ये गोल्स सन 2030 तक, इट इज टू बी रियलाइज बाय ऑल द नेशन स्टेट्स अप टू द ईयर 2030. तो गोल नंबर 1 सेज नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 सेज नो हंगर, मीनिंग किसी को जीरो हंगर. उनका कहना है इफ यू विल जस्ट रीड गोल नंबर 2, इट स्पीक्स अबाउट जीरो हंगर. और गोल नंबर 3 कहता है कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन. कैन आई थिंक ऑफ माय गुड हेल्थ इफ आई डोंट हैव फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, बेयर नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ. हम सब बहुत ही भाग्यवान है कि हमारे सर पे छत है, हमें पानी मिल रहा है, हमें खाना मिल रहा है, हम यहाँ तक कॉन्फ्रेंस तक पहुँच पा रहे हैं, बट कैन आई थिंक ऑफ अ गुड हेल्थ एंड वेल बींग इफ आई डोंट हैव दिस बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और गोल नंबर 16, मैं बस सिर्फ चार गोल्स की बात कर रही हूँ विच इज डिरेक्टली रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि 17 के 17 शायद टाइम की वजह से मैं नहीं बता पाऊंगी, बट गोल नंबर 16 स्पीक्स ऑफ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। तो आप देखते हो कि पीस यानी कि शांति, शांति भी कितनी आवश्यक है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ ह्यूमन। जस्ट 3 साल पहले हम सब COVID-19 पेंडेमिक के शिकार हुए थे, बॉम्बे में भी बहुत हुआ था, मैं बॉम्बे को इससे बिलोंग करती हूँ, पूना में भी मैं खुद विक्टिम हुई थी कोविड, कोरोना के समय में पॉजिटिव आया था, हालांकि माइल्ड था, घर पे सभी को हुआ था, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी कुड सेव आवरसेल्व्स, बट हाउ आवर पीस वाज डिस्टर्ब। और तभी मुझे पता है कि जहां जहां मैं पब्लिक लेक्चर्स देने जाती थी, सबसे पहली बार मैंने ये नोटिस किया कि मेंटल हेल्थ की बहुत बात होती थी बिकॉज योर पीस इज डिस्टर्ब। और बॉम्बे में मैंने देखा कि एम्बुलेंस टू एंड फ्रो, इतनी डेड बॉडीज, बहुत कुछ हुआ और सभी को लग गया था कि कभी किसी वक्त हमें कुछ हो सकता है, रात भर इंसान सो नहीं पा रहे थे, टू दैट एक्सटेंट पीस वॉज डिस्टर्ब। नाउ फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेल बींग ऑफ अ पर्सन, दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड एज सच। तो आपके मन में शायद ये विचार आता होगा कि ओके वी आर लीगल फ्रेटर्निटी, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी में भी शायद कोरोना के बहुत सारे विक्टिम्स रहे होंगे, सो यू कांट सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ डिजीज, यू कांट सेव योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग मेंटली, यू नो, मेंटली डिस्टर्ब्ड इन सम फेज ऑफ योर लाइफ। हमें किसी ने कुछ कह दिया, यू अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, उन्होंने क्यों कुछ ऐसे किया। किसी ने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, योर मेंटल हेल्थ गेट्स डिस्टर्ब थिंकिंग कि उन्होंने क्यों हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। सो योर मेंटल वेल बीइंग इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल, एंड सो ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इज आर ऑल दीज फैक्टर्स फॉर अ बेटर डेवलपमेंट। ज्यादातर मैं आप लोग सारे वकील हो, काउंसिल्स हो, जजेस हो, मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन जब बात आती है नर्मदा बचाओ आंदोलन की, 30,000 फैमिलीज वेर डिस्प्लेस्ड बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट परमिटेड रेजिंग ऑफ द डैम लेवल बाय फ्यू इंचेस, और कई सारे ट्राइबल्स जो थे राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, no alternate accommodation, they lost everything in life including natural resources, jo unka habitat tha, jo unki kheti ki jo aamdani thi, jo kheti hoti thi, sabhi ko chhod ke unko displace kiya gaya। So development cannot be at the cost of displacement, this is directly related to sustainable development। Development is your right but not in a fashion which will overtake the rights of another individual or their families as such, and that is sustainable development। Think of the future generation also। Jab legal fraternity ki baat aati hai, aap sare yahan vakil ho, so if I have to ask a question to myself or if I have to ask a question to you, can we think of litigation free India, zero litigation? I'm sure not। इट इज एक्चुअली लिटिगेशन विच डिस्टर्ब्स योर पीस, और इसीलिए हम चाहे आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, हम कुछ भी बात करें, बट योर पीस इज डेफिनेटली डिस्टर्ब्ड एज सच। बट कैन वी थिंक ऑफ द सिचुएशन, आप कल से सुन रहे हो कई स्पीकर्स को, उन्होंने स्वर्ग की बात की जहां ना तो पुलिस स्टेशन, ना तो कोर्ट, ना तो लॉयर्स, ना तो जजेस की आवश्यकता होगी। So can we think of a litigation free India? Can we ever think, is there a magical power? Can we dream about litigation free India? And if we dream about it, is there a magical power in dreaming? The answer is yes. There is a magical power in dreaming. और जब ड्रीमिंग की बात आती है, हम में से कई लोग शायद आप में से एंडोर्स करते होंगे, जब मैं अगर आपसे कहूं कि स्वप्न देखने का या ख्वाब देखने का तो हक सभी को रहता है। आज मैं अगर लॉ की स्टूडेंट हूं तो कल एक अच्छी वकील बनूं, परसों अच्छी जज बनूं, एकेडेमिशियन बनूं, कंपनी सेक्रेटरी बनूं, सॉलिसिटर बनूं, ये बनूं, वो बनूं, जितनी हो सके उतनी मैं तरक्की कर लूं। हाई कोर्ट के जजेस को शायद ये तमन्ना होगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस में से उनको ये तमन्ना ड्रीम होगा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाए, एंड आफ्टर रिटायरमेंट हमें और कहीं पोजीशंस मिले, हम आर्बिट्रेटर बन जाए, वॉट एवर इट इज। सो देर इज अ राइट टू ड्रीम। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि ह्यूमन माइंड 2000 साल से डेवलप्ड है, क्योंकि आप अगर 2000 साल के पहले की बात करोगे तो आपको पता है वी वेर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, होमो सेपियंस, होमो इरेपियंस, बंदर की तरह हम थे, पूरे शरीर पे बाल थे, एक टेल थी, एवरीथिंग इज शेड ऑफ, और आज हम सब यहाँ बैठे, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो वो कहते हैं कि 2000 साल के पहले जो, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स एक अलग सी स्पीसीज है, उनका ब्रेन है, दे आर ब्लेस्ड विथ अ ह्यूमन ब्रेन, लेकिन अगर 2000 साल के पहले ही हमारे पास ब्रेन था तो हमने तरक्की पिछले 200 साल से ही क्यों की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कल से मैंने सुना किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स की बात नहीं की, लेकिन अब बॉम्बे में मैंने देखा है कि रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, रोबोट सर्जरी कर रहा है और पूरे परफेक्शन के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करेगा जुडिशरी को एंड वो जजमेंट्स देंगे, टाइमली जजमेंट्स, क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली, वो हमने सिर्फ 200 साल के पहले क्यों की? अभी इसका भी एक उत्तर है कि हम सिर्फ नेचर को देखते रहे, हमने अपने पास ब्रेन है उसका शायद कभी भी स्वप्न देखा नहीं था। तो यू नो वी जस्ट लुक्ड एट द नेचर एंड वी नेवर ड्रेम्ड, एंड आफ्टर ऑल व्हाट इज ड्रेम्ड कैन ऑल्सो बी अचीव्ड, and there is a magical power in dreaming। दो उदाहरण आपको दूंगी। 1879 में थॉमस एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड दैट हैज गिवन लाइट टू द होल वर्ल्ड। आपको पता होगा कि कई साल के, वो उनका एक ड्रीम था कि एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उनको सक्सेस मिली। टूडे द लाइट्स विच वी आर एंजॉइंग आर ऑल थैंक्स टू द इन्वेंशन एंड डिस्कवरी ऑफ थॉमस एडिसन। दो राइट ब्रदर्स इन 1850s, विल्बर एंड ऑलविल राइट, दे सक्सीडेड इन इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन्स, एंड क्योंकि वो जब मैकेनिक्स थे, साइकिल मैकेनिक्स, वो हमेशा पक्षियों को उड़ते देखते थे, तो वो सोचते थे कि क्यों ना इंसान भी उड़े पक्षियों की तरह, और उन्होंने लगातार कई सालों तक इन इन्वेंशन यू नो डिस्कवरी की, एंड दे सक्सीडेड इन इन्वेंटिंग एरोप्लेन्स, जिसका फायदा हम सब आज तक ले रहे हैं। सो देर इज अ मैजिकल पावर इन ड्रीमिंग। एंड ओवर एंड अबाउ, सबसे पहली बात कि वेन वी ह्यूमन बींग्स आर ब्लेस्ड विथ अ ह्यूमन ब्रेन, वी हैव एन इनक्रेडिबल कैपेसिटी towards versatility, adaptability और creativity। लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि ठीक है, जब तक अपना मतलब निकल जाए हम क्यों सोचे, let us even not think of litigation free India। अभी फिलहाल legal profession में मैं 12 साल बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। आई वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीडर And before I became an academician, I was promoted by the Ministry of Law and Justice in New Delhi as grade 1 counsel, but I wanted to complete my PhD, so I gave up the roaring profession and joined as an academician. तो मुझे पता है कि यू नो यू हैव दिस क्रिएटिविटी विद इन यू, बट वी यूजुअली एंड नो रिग्रेट्स. वो प्रोफेशन हैड इट्स ओन चार्म. और मैं लीगल एड की लॉयर रह चुकी हूँ. 12 साल तक लीगल एड कमिटी ऑफ द बॉम्बे हाईकोर्ट की लॉयर रह चुकी हूँ. लेकिन 12 साल में मेरी टोटल फीस 750 रुपये, जो मुझे आज तक नहीं मिली. सो कैन वी, आज तक नहीं मिली और मैंने क्लेम भी नहीं किया. और एक जो औरत थी लास्ट एट द फैग एंड ऑफ माई प्रोफेशन, जिसका डाइवोर्स का केस वो सुप्रीम कोर्ट तक हार गई थी और यू नो इट वॉज रिमांडेड, इट वॉज सेंड बैक टू द हाई कोर्ट फॉर री आर्ग्यूमेंट, और लीगल एड थ्रू वो मेरे पास आई. उसको दया आ गई और वो मेरे पास दिवाली के एक दिन पहले आके उसने मुझे 100 रुपये दिए, जो मैंने आज तक संभाल के रखे. वी स्पीक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, वी स्पीक ऑफ लीगल एड, वी स्पीक ऑफ हेल्प टू द पुअर, वी स्पीक ऑफ स्पीडी जस्टिस. तभी के जस्टिस, आज सुबह मैंने मेंशन किया, लेट जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर सर, ही वेंट ट्रांसग्रेसिंग द लॉ, हेल्पिंग आउट पीपल, स्पेशली प्रिजनर्स, स्पेशली यू नो दोज हु आर डिप्राइव्ड, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, डिसएडवांटेज ग्रुप्स. जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस डी ए देसाई फ्रॉम सूरत, आई हैव मेट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. लेकिन दे हैड दिस इंक्लिनेशन एंड दे हैव दिस पावर्स टू एक्सरसाइज दिस पावर्स ट्रांसग्रेसिंग द लॉ. सो वी कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ अ लिटिगेशन फ्री इंडिया इफ वी डिजायर टू. 70 साल से ज्यादा हो गए हमारी देश की आजादी को मिले, 70 साल से ज्यादा. आज सुबह किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान की भी बात की. सो वी टेक प्राइड अबाउट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज सच. बट द अनडिस्प्यूटेड फैक्ट इज दैट वी आर स्टिल लिविंग इन द डार्केस्ट एरा. मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें इट शोज एंड इंडिकेट्स दैट 145 million people are living under abject poverty. Can we call ourselves that we are happy? Do we need to be self-centered about our own self or so? I think this is something which we cannot. So something what is missing is the values. We still decry the erosion of certain universally accepted values. ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज है, इसीलिए इसके बारे में यूनिवर्सली डिस्कशन होता है संयुक्त राष्ट्र में या यूनाइटेड नेशंस में. और एक सत्य घटना आपके सामने रखना चाहूंगी कि व्हाट आर दीज वैल्यूज, और आप एंडोर्स करेंगे मेरे व्यू से कि दीज आर द रियल वैल्यूज इन लाइफ. डॉक्टर आल्बर्ट स्विट्जर, मैं उनका नाम रिपीट कर रही हूं, डॉक्टर आल्बर्ट स्विट्जर के पास 3 डॉक्टरेट थी, 1 इन थियोलॉजी, 1 इन फिलोसॉफी एंड 1 इन म्यूजिक. 3 PhDs उसने कर रखी थी और वो उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी विच हैड इंटरनेशनल फेम एंड क्रिटिकल एक्लेम. और सारा कुछ करते हुए जब वो सिर्फ 32 साल के थे तब तक उनको 3 डॉक्टरेट ऑलरेडी मिल चुकी थी. लेकिन एक दिन सडनली उनके माइंड में स्ट्रक हुआ कि जो कुछ भी डॉक्टरेट्स की, जो कुछ भी मैं आज तक कमा रहा हूं, वो सब कुछ मैं स्वयं के लिए कर रहा हूं. मैंने और लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया, मैंने अपनी सर्विसेज और अपनी खुशी और लोगों के साथ तो कुछ नहीं बांटी. और तभी उसके पास समाचार आए कि इन द ब्लैक कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर सफरिंग एंड आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ मेडिकल एड, जिनको दवाई मिल नहीं रही थी, जिनकी ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे. और तब एट द एज ऑफ 32 he gave up all these degrees and he enrolled himself as a student of medicine at the age of 32 and chauthi doctorate unko medicine mein mili. उन्होंने तय किया था कि मैं वहां जाऊंगा इन द डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका जहां कोई डॉक्टर्स नहीं पहुंचते हैं मेडिकल एड के लिए. उनके काफी सारे मित्रों ने उनको रोका कि आप ये क्या कर रहे हो, चार चार डॉक्टरेट मिलने के बाद आप कहां तक पहुंच गए हो, इंटरनेशनली आप नोन फिगर हो, आप क्यों वहां जाना चाहते हैं जहां हो सकता है कि आपको भी कंटेजियस डिजीज हो. लेकिन वो बिल्कुल किसी का नहीं माने और वहां उन्होंने अपना सब कुछ किया. उनके कई क्रिटिसिजम्स अपने ही फ्रेंड से आए एंड फाइनली एट द एज ऑफ 90 वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया. ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90 टिल 90 सर्विंग ऑल दीज ब्लैक अफ्रीकन्स यू नो इन द डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. तो एक देखने की बात है कि ये सारे जो अचीवमेंट्स हमारी लाइफ में है विच आर ऑल मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स एज सच, वी थिंक दैट वो हमारे अचीवमेंट्स है. व्हाट इज इट दैट वी डू टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. तो ये एक और बाबा हमें रोज की मुरली में यही सिखाते हैं. डिविनी आज सुबह जैसे मैंने कहा कि जस्टिस आप में से कई सारों ने लेट जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर की किताबें पढ़ी होगी और उन्होंने कहा कि डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी ड्वेल्स इन ईच वन ऑफ अस. हम सब में है डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी. द सेम थिंग इज बीइंग टॉट बाय बाबा जिनको हम सुबह की मुरली में कहते हैं. आज सुबह की मुरली पता नहीं आपने नीचे से जो लिखावट होती है क्योंकि आपकी तो स्पेशल क्लास होती है, लेकिन हम बीके इसकी मुरली होती है जिसमें बाबा ने हमें समझाया और बार बार लगातार कि किसी को कड़वे वचन नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, चाहे कोई इंसान कैसा भी हो. ही हार्प्स हार्ड ऑन द कार्मिक फिलोसॉफी ऑफ अ पर्सन एंड बी अवे फ्रॉम वाइजेस. और ये वाइजेस पांच प्रकार के है which actually detaches or which keeps us away from the values. और ये vices है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. किस बात का अहंकार? You know, all these people, old, those who, once in a blue moon हम याद करते हैं people like, जस्ट मैंने आपको अभी रेफरेंस दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर. मैंने एक कुछ ही दिन पहले जब टीवी पे एपिक चैनल में एक रिपोर्ट आ रही थी, वो जो सेल्यूलर जेल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, उनमें वहां पर वीर सावरकर जी को कितने दिन रखा था, उनका सेल दिखाया था. यू विल बी शॉक्ड टू सी कि वो डरावनी, इतनी डरावनी जेल है कि हम बाहर से भी ऐसा चले तो आपको डर लगेगा कि ये किस स्थान पर हम पहुंच गए. और जब उनका सेल दिखाया गया वहां ना तो पानी पीने की कुछ, एक छोटा सा सेल बिल्कुल टूटा हुआ, ना तो पानी की सुविधा थी, वहां ही उनको टॉयलेट करना है, वहां ही उनको यूरिनेट करना है, उन्हीं को खुद साफ अपना कर लेना है और शुद्ध पानी भी मिल पा रहा था ये किसी को पता नहीं. अब हम में से कितने लोग वीर सावरकर को याद करते हैं? सो व्हेन वी स्पीक ऑफ यू नो अटैचमेंट्स, द पोजीशंस, द स्टेटस, द मॉनेटरी एक्विजिशंस, द फाइनेंशियल स्टेटस, द क्वालिफिकेशंस दैट वी होल्ड, ये सब हमारे शरीर के साथ छूट जाना है और यही बाबा हमें रोज सिखाते हैं. लेकिन व्हाट डिफर्स, हम कभी कभी ऐसे ही हंसी मजाक में एक दूसरे से कह देते हैं कि सबसे जो कनिंग या सबसे जो यू नो द श्रूड स्पीसीज है वो है इंसान. ऐसा तो जानवर और जो पक्षियां है वो भी इतने श्रूड नहीं होते जितना श्रूड और कनिंग इंसान होता है. तो व्हाट इज इट दैट मेक्स अस डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द अदर स्पीसीज? एक चीज जो ईश्वर ने हमें दी है वह है ब्रेन. सो इट्स सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट रेस्टलेस स्पीसीज ऑन दिस अर्थ प्लैनेट एंड ड्रिवन विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्टिव क्यूरियोसिटी. आज हमारे पास 2005, द ईयर 2005 वॉज नोन एज द ईयर ऑफ द लॉ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तब आई थी, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बदलाव उस समय आया था, कई सारे नए लॉज उस समय आए थे. सो वी हैव एन इंस्टिंक्टिव क्यूरियोसिटी टू नो, नो हमें जानना है क्या नया है क्या नया है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, ब्रेन है. एंड विथ एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हालांकि मैं अपने LLM, MPhil और PhD को स्टूडेंट्स को सरोगेसी, क्लोनिंग, IVF, टेक्नोलॉजी, राइट टू प्राइवेसी, हाउ इट इन्फ्रिंजेस ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, ये सब पढ़ाते पढ़ाते शायद उसमें स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा कॉम्पोनेंट डाल के जब स्टूडेंट से बातचीत होती है, तब हम रियलाइज करते हैं कि वी हैव येट टू ऑल दिस एडवांसमेंट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एवरीथिंग, बट वी हैव येट टू अचीव वन थिंग एंड दैट्स ह्यूमैनिटी. एक दूसरे की तरफ ईर्ष्या, प्यार या प्रेम का अभाव, घर में घर के लोगों के बीच जो लिटिगेशन सालों से चल रहा है, ये सारे जो है वाइजेस हमें आज भी किसी न किसी तरह मौजूद है. एंड ये जो पांच खतरनाक विकार, आज सुबह ही हमारे वरिष्ठ सुदेश दीदी जी ने बताया कि कैसे ये विकार हमको पूरा हमारी हमसे छीन लेता है और हम एक भी वर्च्यूज अपने में इम्बाइब नहीं कर सकते. तो हमें यह निकालना है. और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, और क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स की टीचर रह चुकी हूं, तो ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है, आई विल नॉट गो टू द कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, आप सारे लॉयर्स ही है, लेकिन यूनिवर्सल वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 सभी ने किया हुआ है. आई गॉट इट एंड आई फिनिश इट. सभी ने किया हुआ है. एंड यस, सो सभी ने नेशन स्टेट ने जो एंडोर्स किया हुआ है उसमें भी कहा जाता है कि जो प्रीएम्बल जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में है वैसा UDHR में भी है कि वेर एज रिकग्निशन ऑफ इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ इक्वल एंड इनएलियनेबल राइट्स फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली इट्स द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस फ्रीडम एंड पीस इन द वर्ल्ड. तो आज भी वहां पर भी पीस की बात आती है विच इज वेरी सिग्निफिकेंट. क्रिमिनल लॉज में द फोर्थ स्टेजेस ऑफ क्राइम में सबसे पहला स्टेज है इंटेंशन विच इज दो नॉट पनिशेबल. एवरीथिंग बिगिन्स विथ योर थॉट. सो लेट अस प्यूरिफाई आर थॉट. देर इज अ मैक्सिम ऑल्सो, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया. एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट और एन ऑफेंस अनलेस इट इज डन विथ अ गिल्टी माइंड. सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोब इन टू वेदर देर वॉज अ गिल्टी माइंड. If it's not a guilty mind, well, you know, a person should not be punished. We have the rule of double jeopardy, right against self-incrimination, so many things as such, which we will not go into. Technology ki wajah se lie detectors, brain mapping test, narco analysis test, sab kuch aaya hai, lekin yet the court is not convinced that this is a good piece of evidence as such. Aur aakhir mein, my time is over because the earlier session got slightly extended for all good purpose, because you all have assembled here and you are all rejuvenated as such. Main ek hi sirf udaharan dena chahungi ki jo ek satya ghatna hai aur woh hai Confucius ki, kyunki ye Confucius great philosopher the और ये एक सत्य घटना थे. वो टीचर थे और हर साल अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते थे और सभी उनके काफ़ी सारे डिसाइपल्स थे, क्योंकि ही वॉज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन एज सच. एंड एट अ वेरी एडवांस्ड एज, जब वो ऑलमोस्ट 85-90 साल के हो गए थे, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड और वो बिल्कुल मरने की तैयारी में थे, कुछ ही सांस चल रही थी और उनके डिसाइपल्स उनके आगे पीछे सब घेरे हुए थे, तो वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक को इशारा किया कि मेरे पास आओ, तो वो आया उसके पास। उसने कहा मैं अपना मुंह खोल रहा हूँ और आप मेरे मुंह में झांक कर मुझे बताओ कि मेरे मुंह के अंदर क्या है। तो उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोला, उस डिसाइपल जो उसका स्टूडेंट था उसने उसके मुंह में झांका और उन्होंने उनसे सबके सामने कहा कि आपके मुंह में सिर्फ मुझे आपकी जीभ दिख रही है, द टंग। तो उसने कहा अब एक काम और कर दो, मिरर के पास जाओ, आईने के पास जाओ, तुम अपना मुंह खोलो और वहां वो देखकर मुझे बताओ कि तुम्हारे मुंह में क्या है। तो वो डिसाइपल गया, उसने देखा और आकर फिर उसने कहा कि मेरे मुंह में दो चीज है, मेरा टंग या मेरी जीभ भी है और मेरे दांत भी है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि मेरे मरने से पहले ये मेरी लास्ट शिक्षा आपको मैं दे रहा हूं बिल्कुल, और धीरे धीरे आवाज में वो बोल रहे थे क्योंकि उनकी सांसें बहुत फूल रही थी और वो बिल्कुल थोड़ी ही समय में मरने वाले थे। उन्होंने कहा कि आप सोचना कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ उसके मुंह में उसकी जीभ रहती है, विच इज अ वेरी सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसको दांत आते हैं विच इज टफ, जीभ जितनी सॉफ्ट होती है उतने दांत टफ होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है और सीनियर होता है एक एक करके सारे दांत टूट जाते हैं और सिर्फ उसकी जीभ रह जाती है। सो माय लास्ट लेसन टू ऑल ऑफ यू इज दैट बी सॉफ्ट, बी गुड टू अदर्स, बिकॉज एनीथिंग विच इज सॉफ्ट विल लास्ट फॉर एवर एंड एवर एंड यू विल बी रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर योर डेथ। And the last proverb of life which Confucius itself shared is, when we have been speaking about igniting the light in soul, Baba also teaches us that bring out the light of your soul. So Baba says, and it is Confucius said it so, which is endorsed by Baba in Everyday Murli, that where there is a light in the soul, there's beauty in the person. Where there's beauty in the person, there is harmony in the home. Where there is harmony in the home, there is order in the nation. And where there is order in the nation, there is peace on this earth planet. So that is what we are still craving for, to be happy and peaceful. Thank you and Om Shanti.